ke prahate class hai 22962 रिकॉर्ड चला है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। परमपिता परमात्मा शिव बैठकर अपने बच्चों आत्माओं को समझाते हैं क्योंकि आत्माओं को ये पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। जीव की आत्मा को ये तो मालूम है कि ये शरीर मेरा है, परंतु आत्मा को ये नहीं मालूम कि मैं किसकी संतान हूं। इसलिए आत्मा को ही कहा जाता है नास्तिक। क्योंकि आत्मा अपने बाप को नहीं जानती तो कहेंगे जीव आत्मा को नास्तिक नहीं कहा जा सकता। जीव की आत्मा को तो पता है कि ये शरीर मेरा है, ये सभी मनुष्यों को पता है कि हम आत्मा हैं अथवा जीव आत्मा। कौन है? कोई को समझावेंगे तो कहेंगे ये पवित्र आत्मा है अथवा ये महान आत्मा है। परंतु उनसे पूछा जाए महान आत्मा भी है तो किसकी संतान है? तो कहेंगे पता नहीं। सभी बच्चियां इन बातों को भूली हुई हैं कि आत्मा का रचयिता बाप कौन है। यूं तो आत्मा को नहीं रचा जाता है, परंतु आत्मा का परिचय देना ही रचना है। पहले तो आत्मा को नहीं जानते थे, शरीर का रचयिता तो लौकिक बाप है। परंतु वो ये रियलाइजेशन नहीं है कि मेरा बाप कौन है। तो सारी दुनिया इस एक बात में ही मुझी हुई है, आत्मा ये जानती है कि मेरा ये शरीर है, इस शरीर को रचने वाला हमारा लौकिक बाप है। ये तो ठीक है, परंतु आत्माओं का बाप कौन है? ये किसको पता नहीं है। आत्मा कहती है इस समय मम शरीर का रचयिता लौकिक बाप है, परंतु आत्मा से ये पूछा जाता है कि तुम आती कहां से हो। तो जरूर कहेगी परम धाम से, तो जरूर पारलौकिक बाप भी होगा, परंतु वो तुम्हारा पारलौकिक बाप कौन है? ये कौन का जवाब लेना रियलाइजेशन कराना है। ये ढेर की ढेर आत्माएं हैं, तो उनमें पारलौकिक बाप कौन है? आत्मा को ये पता न होने के कारण आत्मा को नास्तिक कहा जाता है अथवा निर्धन का आर्फन कहा जाता है। तो कहेंगे आत्मा को न जानने के कारण और आत्मा के बाप को न जानने के कारण सारी दुनिया निर्धन की हो गई है, आर्फन बन गई है। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं तो कहेंगे आर्फन है, निर्धन के हैं, भलापन को ब्राह्मण कहलाते हैं, बी के कहलाते हैं या पीबी के कहलाते हैं। परंतु बाप का पता नहीं है कि बाप क्या है और कौन है। घर के लिए आपस में लड़ते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है, तुम क्यों झगड़ते हो? विद्वान आचार्य पंडित कोई को भी इन बातों का पता नहीं है। कह देंगे हम आत्माएं तो बुदबुदा हैं, जो मिटते और बनते रहते हैं। एक तरफ कहेंगे आत्मा अविनाशी है, दूसरी तरफ कहेंगे बुदबुदा है। सागर से निकले हैं फिर सागर में लीन हो जाएंगे, गोया बुदबुदा सागर का बच्चा ठहरा। फिर कह देते हैं सागर से हम बुदबुदा बने। अगर कहें हम सागर के अंश हैं तो भी तो अलग हो गया ना, बड़ी ज्योति का अंश है तो भी टुकड़ा अलग हो गया। तो फिर तत्व में लीन होने की बात तो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और इमार्टल बाप का, इमार्टल आत्मा का बाप भी इमार्टल ही होना चाहिए। मार्टल शरीर का बाप मार्टल है, शरीर को देखकर तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। परंतु आत्मा का बाप कौन है? महान आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा कहती है ना, कहते हैं मेरी आत्मा को बतरन जाओ, आत्मा बोलती है ना। तो आत्मा को ये पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। अब ये बाप का रियलाइजेशन कौन करे, कौन रियलाइज करावे? तो बाप खुद आए हैं अपना परिचय देने के लिए। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। और बाप जहां से आए हैं जहां आत्मा रहती है वो है परम धाम। पारलोक अर्थात परे से परे लोग, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। बाकी हम मनुष्य तो नीचे रहते हैं, तो यहां है त्रिलोकी तीन लोक, मूल वतन अर्थात इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन और स्थूल साकारी वर्ल्ड। तो ये तीन लोक का राज समझाना है। मूल वतन वहां है जहां से हम आत्माएं आती हैं मूल रूप में, वहां आत्माएं शांत रहती हैं। तो वहां का नाम ही है शांति धाम। पर दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहां आत्माएं मूवी में रहती हैं, वहां सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, भोग लगा करके आती हैं। निराकारी दुनिया में तो भोग नहीं लगाया जा सकता, ये जाती हैं सूक्ष्म वतन में, और वहां सभी इकट्ठे होते हैं। कब इकट्ठे होते हैं? सभी कब इकट्ठे होते हैं? हैं? जब सारी दुनिया का विनाश होता है तो अंत में सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होती रहती हैं। वहां मूवी होती है जिसका मिसाल ये बायोस्कोप भी देखे होंगे। पहले मूवी था फिर टाकी बना है, तो मूवी बायोस्कोप भी देखा था। ताकि दुनिया ये है और मूवी है सूक्ष्म वतन में, परंतु ये बातें दुनिया नहीं जानती है। बाबा पहले पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो संकल्प सूक्ष्म होते हैं या स्थूल होते हैं? सूक्ष्म संकल्पों से सूक्ष्म सृष्टि रची जाएगी या स्थूल सृष्टि रची जाएगी? फिर स्थूल वतन में आते हैं। तुम बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाकर के बाप से बातचीत भी करती हो, संदेश लेकर के निराकारी दुनिया में नहीं जाते हो, संदेश लेकर के बाबा के पास आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन में जाती हो, और ये तो है साकारी दुनिया। परंतु दुनिया में इन तीन लोगों का कोई को पता नहीं है। पार लोक है ऊपर में, सूक्ष्म वतन है बीच में, और ये साकारी दुनिया नीचे है, और सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी से नीचे की दुनिया की है। सूक्ष्म वतन में कोई भी राजाई नहीं होती है, 22962 की वाणी का दूसरा पेज, वहाँ कोई 84 जन्म नहीं भोगते हैं। ये हर एक बात समझने की है, और ये कोई झूठी दंत कथाएं नहीं है। हमारा बाबा भी गुप्त है, हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, और हमारा स्टेटस भी गुप्त है। वो लोग तो यहाँ ही पढ़ करके बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। उसमें गुप्त होने की बात ही नहीं है, और हम तो इस पढ़ाई से पद पावेंगे नई दुनिया में, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया तो खलास होने वाली है, और देवताएं इस पुरानी दुनिया में पैर नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण पुरानी दुनिया में आ नहीं सकता, क्योंकि पुरानी दुनिया तो खलास होनी है। तो ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। जितनी नई नॉलेज होगी उतनी नई दुनिया होगी। ये मनुष्य सृष्टि है, और सत्युग में है देवी देवताओं की सृष्टि। सत्युग को गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, गॉड तो भगवान को कहा जाता है, तो जरूर गॉडेस भगवती को कहा जाता है। तो ये गॉड गॉडेस वास्तव में कहाँ का टाइटल है? जरूर कहेंगे संगम सत्युग के सत्युग से पहले और कलयुग के अंत का टाइटल है। और जब गॉड गॉडेस कहते हैं फिर तो यथा राजा गॉड गॉडेस तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े। परंतु प्रजा को गॉड गॉडेस कहना रांग हो जाता है, प्रजा को गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए फिर उनको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है। परंतु कहेंगे कि मर्तबा इतना रखते हैं। तो ये गॉड गॉडेस कौन थे? ये गॉड गॉडेस नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले ही थे, क्योंकि उनको गॉड डायरेक्ट पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाला गॉड है तो पढ़ने वाले भी गॉड गॉडेस ही बनेंगे। डॉक्टरों को डॉक्टर पढ़ाता है, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाता है, तो गॉड आकर जरूर गॉड गॉडेस बनावेंगे। ये लक्ष्मी नारायण गॉड गॉडेस थे, कौन से लक्ष्मी नारायण? जो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने, और बीच में प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते हैं। कह हैं कि बनते भी हैं तो संकल्पों की सृष्टि में, प्रैक्टिकल तो नहीं बनते। तो बाबा ने समझाया है, ये जो मनुष्य सृष्टि है उसमें जीव आत्माएं हैं। आत्मा से पूछा जाता है तुम्हारा बाप कौन है, पारलोक से आत्माएं आती हैं तो जरूर उनका पारलौकिक बाप भी होगा ना। परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, तो वो बाप फिर सभी आत्माओं को भेज देते हैं। कहते हैं कि सभी धर्म स्थापकों को वो भेज देते हैं, और हम याद भी उनको करते हैं। तो क्योंकि बाप को तो इस सृष्टि पर इन आंखों से देखते हैं, परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर नजर करके याद करेंगे। कहेंगे हे पिता हे प्रभु, तो जरूर आत्माओं का घर ऊपर में है ना। लौकिक संबंध से तो ये स्थूल घर याद आता है, और पारलौकिक संबंध से ऊपर का परमधाम याद आवेगा। जब कोई मरता है तो उसको कहा जाता है भगवान को याद करो, ये रस्म कहां से पड़ती है, है? जब देह से, देह के संबंधों से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से ममत्व टूट जाता है, अर्थात पूरा देवान छूट जाता है, एक भगवान ही सहारा बनता है, तब की बात है। अब दीन दुनिया को याद करना छोड़ दो, किसको याद करो, एक भगवान बाप को याद करो, तो भगवान जरूर ऊपर में है ना, यहां थोड़े ही है। भगवान का परमधाम है ऊंचते ऊंच, उनके लिए गाया भी जाता है, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा गांव, जब साहब से भी बातें उठाए सिख लोगों को समझाना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, हमने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, फिर तुम माया के बंधन में कैसे बन गए, माया ने तुमको दुख के बंधन में बांधा है। यहां ये माया का कर्म बंधन है, सत्युग में कर्म बंधन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई भी विकारी कर्म नहीं होते, वहां तो सुख का संबंध ही है, यहां इस दुनिया में है बंधन, और बंधन तो खराब चीज होती है। हमने तो तुमको सत्युग के संबंध में भेजा था, फिर माया ने दुख के बंधन में जकड़ा है। सत्युग त्रेता में कितना तुमने सुख भोगा, दुख होता ही तब है जब तमो प्रधान आत्मा होती है, जड़ जड़ीभूत अवस्था हो जाती है। इस शरीर को भी पहले बाल्यावस्था होती है, उनको कहेंगे सतो, फिर रजो, फिर तमो। बुढ़ापे में जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है। तो ये षष्टि भी ऐसे है। कलयुग का अंत है जर्जरीभूत अवस्था। अब ये कलयुगी पुरानी दुनिया खलास होनी है। ये कलयुग का अंत, यहाँ कुंभी पाक नरक है ना, बिच्छू टिंडन नागबलाएं पैदा ही करते रहते। और दुखी होते रहते हैं। तो कहेंगे सभी स्वर नरकवासी हैं। अभी फिर स्वर्गवासी बनना है, अभी फिर अपन मनुष्य से देवता बन रहे हैं, परमपिता परमात्मा बनाए रहे हैं। तो ये हुई गॉडफादर की यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अहम ऑब्जेक्ट क्या है ये भी कोई नहीं जानते हैं। अरे बैरिस्टर पढ़ाई कर क्या बनावेगा, डॉक्टर पढ़ा करके क्या बनावेगा, तो गॉड आकर के पढ़ा कर क्या बनावेंगे। बैरिस्टर जरूर बैरिस्टर ही बनावेगा, गॉड भी जरूर पढ़ाई कर गॉड गॉडेस बनावेंगे। ये लक्ष्मी नारायण गॉड गॉडेस भारत में ही राजी करते थे। परंतु मनुष्यों ने शास्त्रों में अरबों बरस सुने हैं तो कितना मुझ गए हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में ये दुनिया ही खलास होनी है। देखा जाता है इस दुनिया को खलास करने का बारूद भी तैयार हो चुका है। भगवान आते हैं तो पुरानी दुनिया का खलास करने वाला बारूद भी तैयार कराए देते हैं और नई दुनिया का फाउंडेशन भी डालते हैं। एक काम गुप्त में होता है और एक काम स्थूल में होता है। स्थूल बुद्धि वालों के द्वारा स्थूल काम होता है विनाश का और सूक्ष्म बुद्धि वालों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। तो अब ये दुनिया खलास होनी है। जब तक भगवान बाप नहीं आते हैं तो ये दुनिया को खलास करने वाला बारूद भी तैयार नहीं होता। कोई नहीं जानता था कि 70 साल पहले ये एटमिक एनर्जी क्या होती है। अभी तो सारी दुनिया जानती है कि दुनिया के खलास करने का सामान तैयार हो गया। तो बाप कहते हैं अभी छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वाणी से परे निर्वाण धाम जाना है। एक अपने धर्म की बातें कितनी सुनाते रहते हैं, सब तमो प्रधान बातें सुनाते हैं, बोल बोल करके कितना रोला कर दिया है। अभी बाप आए हैं कहते हैं ये बोल बोल की दुनिया खलास होनी है, अभी निर्वाण धाम जाना है। मनुष्य बल अक्षर कहते हैं, वानप्रस्थ है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हर एक बात का अनर्थ कर देते हैं, कह देते हैं हम वानप्रस्थ में जाते हैं, बाप कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, मैं तो तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूं, मैं आया हूं तुमको पति से पावन बनाने, तो अभी मेरी मत मानो, मैं जो बताता हूं मेरी श्रीमत पर चलो। मैं ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं, और वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही परमपिता परमात्मा। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है और भ्रष्ट से भ्रष्ट कहा जाता है तो कौन सी दुनिया की बात है। परम धाम में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं होते, न वहां कोई भ्रष्ट होता है न कोई श्रेष्ठ होता है, वहां तो सब बिंदी बिंदी आत्मा एक जैसी। श्रेष्ठ और निष्कष्ट पार्ट तो इस दुनिया में बजाया जाता है। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही परमपिता परमात्मा, वो ही आते हैं मत देने के लिए। परंतु वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, एक होता है हद का जन्म मरण, देह का जन्म मरण होता है, और एक होता है आत्मा का सूक्ष्म जन्म मरण। आत्मा निश्चय बुद्धि बनती है, बाप को पहचानती है तो कहते हैं आत्मा का जन्म हुआ, और आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, त्याग देती है तो कहेंगे मृत्यु हो गई आत्मा की, पूरा देह अभिमानी बन पड़ा। जो बेहद का जन्म मरण है कैसे पहचाने कि वो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला परमपिता परमात्मा कौन है। वो एक है या अनेक है? है एक है, बाकी सब बाकी सब निश्चय निश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। ये भी एक परमपिता परमात्मा की पहचान है इस दुनिया में कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वो भी अपना शरीर धारण करते हैं, परंतु परमात्मा का कोई भी शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं है, तब कहते हैं मैं अशरीरी निराकार हूं। आकारी तो जरूर सूक्ष्म बतन में होंगे, ओम शांति। दूसरी वाणी है 3962 की, रिकॉर्ड चला है, नहीं नहीं इनको राह दिखाओ। बच्चे याद करते हैं बाप को कि हे अंधों की लाठी, सभी अंधे बुद्धिहीन तो हैं ही ना, तो बुद्धिहीन और अंधे बाप को पुकारते हैं कि बाबा हम नहीं नहीं हैं, बुद्धिहीन बन गए हैं, हमको अपने शांति धाम सुखधाम की राह बताओ। बार बार हमारा मन बुद्धि भटक जाता है, क्योंकि ये दुनिया दुखधाम है, सुखधाम का रास्ता हम भूले हुए हैं। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है, और वो है शांति धाम, जहां अशरीरी दुनिया है, आत्माएं अशरीरी है ना, वहां आत्माओं को शरीर नहीं है, शरीर तो यहां मिलता है, तो वो है निराकारी दुनिया, वाणी से परे का स्थान, और ये है टाकी दुनिया। शरीर मिलने से आवाज होने लग पड़ता है, क्योंकि आत्मा अलग चीज और शरीर अलग चीज, ये आत्मा मन बुद्धि सहित है, ऐसे नहीं है कि शरीर मन बुद्धि सहित है, शरीर छूट जाता है आत्मा चली जाती है, तो क्या शरीर में मन बुद्धि रह जाती है? नहीं, आत्मा तो चेतन है और ये शरीर तो जड़ है। हम आत्मा का धर्म शांत है, जब शरीर धारण करते हैं तो कर्म करते हैं, तो टाकी बन जाता हूं। असल में हम आत्मा शांति धाम की रहवासी हूं, जहां से हम आते हैं, परंतु पहले पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? कोई नियम है? है जो पहले पहले स्वस्थिति में टिकती हैं, वो पहले पहले इस सृष्टि में आती हैं, और नंबर बार सही स्थिति में टिकने वाली सब हैं, जो बाद में आत्मिक स्थिति में टिकती हैं, वो बाद में आती हैं, तो पहले पहले आत्माएं आती हैं देवी देवता धर्म की। देवी देवताएं होते ही हैं स्वस्थिति वाले, सतयुग में पवित्र देवी देवताएं रहते थे, गुणों की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता। सदगुण में पांच विकार होते ही नहीं है, तो उनको कहा जाता है सुखधाम। परंतु सुखधाम का कोई को भी पता नहीं है कि वो सुखधाम कहाँ होता है, और दुखधाम में तो मनुष्य पुकारते हैं कि हम अंधे हैं, हे सदगुरु आकर के राह बताओ, क्योंकि गाया भी जाता है सदगुरु तारे कुसंग बोरे। तो जरूर दुनिया में कुसंग ही कुसंग है, जो सैकड़ों वर्षों से ये दुनिया गिरती ही चली आई, सब डूबते जा रहे हैं। ये कलयुगी गुरु डूबोते हैं। कहा भी जाता है सदगुरु बिना घोर अंधेरा, और गुरु तो अभी ढेर हैं, सदगुरु तो एक ही गाया हुआ है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले सुखी ही सुख था, और पवित्र गृहस्थ आश्रम था, उसको कहा जाता है स्वर्ग अथवा देवताओं की दुनिया, और इसको कहा जाता है असुरों की दुनिया। यही भारत देवी देवताओं का परिस्थान था, अभी तो कब्रस्तान है, मुर्दे बन पड़े हैं, जैसे कि कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी इस पुराने मकान में रहने की दिल नहीं होती है, फिर तो नया मकान बनाया जाता है। तो अभी ये पुरानी दुनिया पुरानी, फिर जरूर नहीं बनेगी। ये संगम युग है, जबकि बाप बच्चों के पास आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं नई दुनिया सुखधाम का, तो जरूर उनको पति दुनिया पति शरीर में आना पड़े। ऐसे तो सारी दुनिया पतित है, सतयुग में है सभी पावन, कलयुग में है सभी पतित, परंतु सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होते हैं। ये झाड़ तो पीछे वृद्धि को पाता है, जब मनुष्यों की वृद्धि होती है, और पुनर्जन्म भी जरूर सभी को लेना पड़े, तो बाप समझाते हैं सभी घोर अंधेरे में, बल ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु वो साफ कलयुगी। ये गुरु लोग तो होते ही आए हैं और जन्म मरण में भी आते रहते हैं, क्योंकि वापस जाने का रास्ता तो कोई जानता ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, एक है ज्ञान, दूसरी है भक्ति, और तीसरा है वैराग। वैराग तो है सन्यासियों का, वो घर बार छुड़ाने के लिए वैराग दिलाते हैं, हाँ पवित्र बनने के लिए खुद भी छोड़ते हैं, तो वो हुआ रजोगुणी सन्यास। क्योंकि भारत में पवित्रता तो जरूर चाहिए, भारत ही सबसे जास्ती पवित्र गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति मार्ग था, अब यह पवित्र है, तो अभी इन अपवित्रों को पवित्र कौन बनावे? क्या गंगा बनावेगी? गंगा तो पानी है, पानी को मथने से कोई मक्खन नहीं निकलेगा, तो ज्ञान सागर बाप है, सागर मंथन का तो नाम वाला है। सागर का मंथन होता है तो क्या निकलता है? नए नए रतन निकलते हैं। उस सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, वो तो स्थूल सागर है, वो भी पानी का सागर है, ये तो ज्ञान सागर है। और पानी की गंगा को ज्ञान गंगा भी नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, ये परमपिता परमात्मा की महिमा है। तो बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में ये महिमा गाते आए हो तो जरूर वेद के बाप की ये वस्तु है। उस बाप से जरूर वर्षा मिलना है, तो वो वर्षा देने कब आते हैं? जरूर तब आते हैं जब सब मनुष्य दुखी हो जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का सुख देंगे। वो है वैकुंठ नई दुनिया का रचयिता। तो बाप कहते हैं मैंने तुम्हें सुख का वर्षा दिया होगा ना, लौकिक बाप से तो तुम जन्म जन्मांतर अल्पकाल का वर्षा लेते आए। अभी मैं आया हुआ हूँ वैकुंठ की बादशाही का वर्षा देने। 21 पीढ़ी गई हुई है, 21 कुल का उद्धार कौन करेंगे? जरूर सुख देने वाला एक है। गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, लौकिक बाप की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। शिव के मंदिर में जा कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु भारतवासी ये थोड़े ही जानते हैं हम ये महिमा किसकी गाते हैं। बाप कहते हैं कि तुम ये मुझे निराकार बाप की वंदना करते हो, मेरे से अभी तुमको सुख का वर्षा मिल रहा है, सतयुग का बेहद का सुख तुम अभी ले रहे हो, अपार सुख है, तो अभी तुम मेरा हाथ पकड़ो और संग बुद्धि का योग तोड़ मेरे संग जोड़ो। मैं गाइड बन करके आया हुआ हूँ ज्ञान और योग सिखलाने के लिए। 3962 की वाणी का दूसरा पेज। अभी जो पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया में सुख पावेंगे, सभी का उद्धार होना है। हम पहले पूज्य देवता थे, अभी पुजारी बने, गायन भी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। भारत में पूज्य देवताएं थे, वो ही अभी पुजारी बने हैं। राज्य करते करते पुनर्जन्म लेते हैं। ये शक्ति का चक्र अभी बुद्धि में रखना है। अभी हम शूद्र हैं, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। ये हमारी बायजोली है। हम सुदेवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने, देवता वर्ण में हम 21 जन्म रहे, फिर खाद पड़ गई। तो देखो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्कर फिरता रहता है। अभी आकर के हम बाप से मिले हैं, जो देवी देवता धर्म वाले हैं उनके लिए ही गाया जाता है। आकर के देवता ही पार्ट बजाते हैं ना, मानुष से देवता की एक रतन लागी वार। तो जरूर आत्मा परमात्मा बहुकाल अलग रहे ना। गाते हैं सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो जरूर परमात्मा को आना पड़े। शिव जयंती मनाते हैं परंतु वो मानते ही नहीं है कि शिव कैसे आकर के ज्ञान देते हैं, शिव के आने का उनको पता ही नहीं है। राम का जन्म मनाते हैं, कृष्ण का जन्म मनाते हैं परंतु शिव की जयंती का कोई को पता नहीं है। कह देते हैं महाशिवरात्रि, वो निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर उनको रथ चाहिए, ये है उनका भाग्यशाली रथ। इस भाग्यशाली रथ को ब्रह्मा कहते हैं। उनकी मुखवंशावली ये ब्राह्मण हैं, वो तो कुखवंशावली ब्राह्मण है। और तुम हो मुखवंशावली धर्म के बच्चे। क्या है व्याख्या मुखवंशावली और कुखवंशावली की है? जो मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बनते हैं वो है मुखवंशावली। मुख से सुने हुए ज्ञान को आधार माना हुआ है, ज्ञान को महत्व देते हैं। और जिन्होंने ज्ञान को महत्व नहीं दिया, कोख अर्थात गोद लेने को महत्व दिया कि हमने बाबा की गोद ली है, तो मैंने थोड़ी गोद ली है। मुख से निकली हुई बातों को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? गोद को महत्व देंगे। तो गोद कहा जाता है कुख को, उनको कहा जाता है कुखवंशावली ब्राह्मण। अभी तुम तो मुखवंशावली धर्म के बच्चे हो, तो वो काय के बच्चे हो गए? वो धर्म के बच्चे हुए या अधर्म के बच्चे हुए? अधर्म के बच्चे हो गए। उस गोद में कौन पलते हैं? नौकुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं। कौन सी कुरी वाले श्रेष्ठ होते हैं? है? जरूर कहेंगे सूर्यवंशी श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल है। बाकी सभी हैं भ्रष्ट कुल के। मुकाबले में कहा जाता है तो वो धर्म के हुए कि अधर्म के हुए? है? बाप आकर के जो धर्म स्थापन करते हैं, क्या धर्म है आत्मा का? आत्मा का धर्म है शांत, आत्म की स्थिति में रहना। जिनका आत्मिक धर्म नहीं है वो फिर देहभान में आते हैं, वो राजाई लेने के लिए कैसी लड़ाई लड़ेंगे? है? बाहुबल दिखाते हैं, अधर्म की लड़ाई लड़ते हैं। ज्ञान योग जैसे उड़ जाता है। तो तुम हो मुखवंशावली धर्म के बच्चे। तुम कोख में पले हो, कोख का तुमको बहुत फखुर है या मुख से निकले हुए ज्ञान का फखुर है? तुमको ज्ञान का फखुर है। परमपिता परमात्मा आकर बच्चों को धर्म की गोद में लेते हैं। बच्चे भी कहते हैं और गोद में भी लेते हैं। कहते हैं बाबा हम आपके थे। कब? हाँ, यज्ञ के आदि में भी हम आपके थे, फिर आपने सुख में हमें भेजा। अभी हमने शूटिंग के हिसाब से भी 84 जन्मों का चक्कर लगा लिया, अभी फिर हमने आपको पाया है, तो 5-4 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले ना। बाप भी कहते हैं हमने तुमको हीरे जैसा बनाया था, अभी तुम कौड़ी जैसे बन गए। क्या अंतर होता है हीरे और कौड़ी में?
कौड़ी में अंधेरा होता है, हीरे में चमक।
कौड़ी में अंधेरा होता है और हीरे में ज्ञान की रोशनी भरी पड़ी है। भारत अभी कंगाल है। बनाया किसने? है? जरूर कहेंगे माया रावण ने। ये दो नाम क्यों देते हैं? है? रावण ने बनाया या माया ने बनाया या दोनों ने मिलकर के बनाया? अभी फिर बाप देवता बनाते। आत्मा बोलती है हम आत्मा सो देवता थे, फिर क्षत्रिय धर्म में उतरे, फिर वहां पुनर्जन्म लिया। आत्मा ही जन्म मरण में आती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कहती है हम फिर पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर से आए, नीचे गिरे, अंत में आकर के अभी शूद्र बने, अभी हम कौड़ी जैसा बन गए। तो ये है हमारा स्वदर्शन चक्र। पहले हम बाबा के बच्चे थे, तो जरूर उस बाप को याद करना पड़े। इसको कहा जाता है मनमना भव। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ये सुखदाम शांति धाम की राह बताने वाले पंडे हैं। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान कहते हैं अभी मैं आकर भक्ति का फल देता हूं। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर आते हैं, पवित्रता का सागर बनाते हैं। कहा जाता है सत्ता संग तारे, स्वर्ग और कलयुग गुरुओं का संग बोरे। वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो गाते हैं नैन हीन को राह दिखाओ। अभी राह बताने वाला और जिनको राह बताते हैं वो तो दो हो गए ना। अगर ईश्वर सर्वव्यापी कहें फिर तो सभी ईश्वर हो गए, फिर कौन किसको राह बतावेगा, किसको पुकारेंगे? अब ये तो काम नहीं है। हम आत्मा के रूप में भाई भाई हैं, शरीर के रूप में तो भाई बहन हैं, स्त्री पुरुष हैं, तो भाई बहन हो गए। फिर उसमें कोई भाई बहन क्रिश्चियन धर्म वाले, कोई भाई बहन बौद्ध धर्म वाले, बाकी सभी एक नहीं हो सकते हैं। न एक ही समय सभी आते हैं। अब हम देवी देवता सतयुग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। हमारे धर्म को 5000 वर्ष हुए और मुख्य हैं ही 4 धर्म। ये ड्रामा पर और झाड़ पर अच्छी रीति समझाना है। बाप कहते हैं तुम भारतवासी तो देवी देवता थे, अभी फिर असुर कंगाल आर्फन बन पड़े हो, क्योंकि बाप कोई भूल गए हो कि कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। इसलिए गीता में श्रीमद् भगवत कहते हैं भगवान ही श्रेष्ठ है, श्री माना श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ है एक परमपिता परमात्मा। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर थर्ड नंबर में कौन? ये लक्ष्मी नारायण। ये मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि में 84 जन्म भोगने होते हैं सूक्ष्म बतन में, तो भोगते नहीं है हम 84 जन्म भोगेंगे। तो जो और धर्म वाले आते हैं वो कम जन्म लेंगे, क्रिश्चियन बौद्ध उनसे भी कम जन्म लेंगे, तो मैक्सिमम 84 जन्म है और मिनिमम है 1-2 जन्म। परंतु ये हिसाब बहुत समझने का है और सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है और नॉलेज फुल बाप ये नॉलेज देते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, दूसरा कोई ये बात बता ही नहीं सकता। सतयुग में 12 सुखधाम था, वहां अकाली मृत्यु होता नहीं है, योग से हम एवर हेल्दी एवर निरोगी बनते हैं, 21 जन्म वहां कोई भी बीमारी नहीं होगी, वहां स्वर्ग में अस्पताल डॉक्टर आदि नहीं होंगे, जज मजिस्ट्रेट ये धर्मराज आदि कोई होते ही नहीं, क्योंकि वहां तो है ही स्वर्ग, इनकी दरकार ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।